کیا زمزم ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتھیو دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ رب کریم ہمارے حضرت جی بیگ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور بغیر جسمانی تکلیف کے مزید درجات بلند فرمائے. آج ہی ساتھی کافی ملے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ایک سال پہلے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ کا بڑا احسان کہ صبح ڈاکٹر طاہر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بڑی خدمت کی ہے انہوں نے حضرت جی کی، پا گئے الحمدللہ درجات پا گئے. اور ڈاکٹر طاہر صاحب نے جو پوزیشن بتلائی ہے، اگر حضرت کی اجازت ہو تو تھوڑا سا اس بیان سے پہلے میں دو تین منٹ، وہ جنوری کا اجتماع تھا ہمارا سالانہ کراچی کا، تو اجتماع سے پہلے حضرت جی سے رابطہ تھا اور حضرت جی ارشادات جس طریقے سے فرما رہے تھے کراچی کے اجتماع کے، کہ حضرت تو تشریف نہیں تھے لا رہے لیکن حضرت کے نامینیٹڈ جو خلفاء حضرات اور اکابرین تھے یہ ملیشیا سے تشریف لا رہے تھے. تو پہلی جنوری کو اجتماع شروع ہوا. پہلی سے پہلے الحمدللہ حضرت جی کے ارشادات پہ عمل کرتے ہوئے اسی طریقے سے وہ انتظامی امور طے پائے اور 29 دسمبر کو پتہ چلا کہ حضرت جی کی طبیعت صحیح نہیں ہے. اکابرین پہنچ گئے، اجتماع شروع ہو گیا اور دعاؤں کی درخواست پیش کی کہ حضرت جی کے لیے دعا فرمائے، حضرت جی کی طبیعت صحیح نہیں ہے. پہلی کو اجتماع شروع ہوا، پہلی کو پتہ چلا کہ حضرت جی کو ہاسپیٹل لے کے جانے کی کر رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب سے رابطہ ہے، طبیعت بحال نہیں ہو رہی. 2 تاریخ کو غازی صاحب کا فون رو کے آنسوؤں سے روتے ہوئے ہچکیوں سے آیا کہ ظہیر صاحب آ جاؤ، یہی الفاظ تھے، بس ساتھ ہی جان نکل گئی، کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی اور زبان گنگ ہو گئی. اور گنگ ہونے کے بعد بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کے رابطہ کیا حضرت گوہر رحمان صاحب مجزلہ والی، حضرت میجر عمر حیات صاحب آئے ہوئے تھے، کرنل جوید صاحب ملیشیا کے دورہ کر کے آئے تھے، خورشید صاحب اسلام آباد سے پہنچے تھے ایک ہی دن پہلے. میں نے جا کے بتلائی ساری کنڈیشن، انہیں فرمایا جی بس تیاری کرو، جانا ہے ہر حالت میں جانا ہے واپس. وہ پھر جس طریقے سے بھی کیا، پوری رات لگ گئی اسی کوشش میں کہ جانا ہے، جو ٹکٹیں ہو سکیں جتنے کی ہو سکیں کوئی پرواہ نہ کی، اور ہم اسلام آباد پہنچ گئے. اسلام آباد پہنچ کے مرکز پہنچے، حضرت ایڈمٹ ہو چکے ہوئے تھے، وینٹیلیٹر لگ چکا ہوا تھا. یہاں پہ آ کے جب کنڈیشن دیکھی، حضرت الیاس صاحب بھی ساتھ تھے، ڈاکٹر علوی صاحب بھی تھے، عمران مسعود، بڑے ساتھی آئے تھے سارے، ایک ہی جگہ پہ ہم اکٹھے قیام کیا اور یہ بس تڑپ کے جلدی سے جائیں اور کسی طریقے سے ہاسپیٹل جا کے حضرت جی کی زیارت کر لیں اور دیکھیں جا کے حضرت جی کی کنڈیشن کیا ہے. ہسپتال دوپہر کو ہم، میں، الیاس صاحب اور صداقت صاحب، ہمیں ایک ساتھی جو ہیں وہ ہاسپیٹل لے گئے. آگے جا کے پتہ چلا کہ اجازت ابھی جنرل صاحب کی نہیں ہے، ساتھیوں کو نہیں ملنا، شام کا وقت ہے 4 بجے کا. ہم واپس آ گئے، واپس آ کے بس اللہ کے آگے گڑگڑاتے رہے اور دعائیں کرتے رہے. حالات جو بتلائے ہیں صبح ساتھیوں نے، آپ یقین مانیں، خدا شاہد ہے، بالکل جو ساتھی گواہ ہیں، وہ بس آخری ہی وقت تھا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. تمام تیاریاں ہو رہی ہیں، عجیب، ہر ساتھی کے چہرے پہ مایوسی چھائی ہوئی تھی، عجیب قسم کی کیفیت تھی. شام کو جب گئے حضرت جی کی زیارت کے لیے، پوری جماعت حضرت جی کی زیارت ہوئی. زیارت ہونے کے بعد میں نے ڈاکٹر علوی صاحب کو کہا، میں نے کہا جی بات سنیں، मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाब देखा हुआ है वो झूठा नहीं है, हजरत जी ने भी फरमाया था, उस ख्वाब की तस्दीक फरमाई थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक सुनाए गए थे कि हजरत जी की उम्र में बरकत अता कर दी गई है। और मैं कह रहा हूँ जी इंशाल्लाह ताला हजरत सही होके इंशाल्लाह 10-12-15 दिन में घर चले जाएंगे। तो कहते हैं जी क्या, तो मैंने कहा हम चलते हैं वापस, हजरत से इजाजत लेते हैं, गोहरे मान साहब से वापस चलते हैं, कुछ नहीं होना इंशाल्लाह ताला। इतने में तस्दीक मनीर साहब, मलक मनीर साहब बैठे हुए हैं, ये आगे मिलने के लिए, इन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी। इन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि हजरत इंशाल्लाह ताला सही होके 10 दिन में घर चले जाएंगे। फिर मैंने तो वो रूहानियत को सब देखा कि जो बतलाया गया था कि कुछ दर्जात हैं जो बुलंदी उसके लिए देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जिस्म को लागर कर दिया जाता है। तो मुझे ये पक्का यकीन था, हम दूसरे दिन वापस आ गए और राबता रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और होते 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 करते करते आज हजरत जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेपनाह शुक्र हमारे सामने तशरीफ फरमा है। और इंशाल्लाह ताला मेरा ईमान है, साथियों की दुआएं हैं, हजरत इससे भी अच्छे हो के उसी तरह जैसे कहा था कि हजरत दौरे करेंगे, तमाम दौरे करेंगे, गैर ममालिक के भी दौरे करेंगे। अल्लाह के यहाँ कौन सी कमी है, रब्बे करीम को मजबूर थोड़ी है कुछ। जिस मालिक ने ये मौजदा दिखा दिया, बल्कि इटली के साथी आए हुए हैं, उन्होंने आज कहा जी आपको जब फोन किया था पिंडी तो आपके ये लफ्ज मुझे अभी तक याद है कि अल्लाह ने को मौजदा दिखाना है, तो वही मौजदा अल्लाह ताला ने दिखा दिया। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है, जितना हम शुक्र अदा कर लें कम है। बाकी जो मुझे बुलाया गया इसमें खुदा की कसम कोई हमारा कमाल नहीं है। मैं तो अल्लाह का शुक्र जितना अदा कर लूं, मेरा खानदान, मेरे भाई जितना शुक्र अदा कर लें कि इनकी शफकत, इनकी मोहब्बत ने हमें जमात में जोड़ा हुआ है। और यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह कोई ऐसा अमल ना हो जिससे इनके दिल में कोई दुख हो, हमारी तरफ से कोई तकलीफ हो, ये ना निकालें कि तू ना निकाल देना। क्यों कि एक ख्वाब ऐसा भी देखा है, ये जो हमें खिलाफतनामे तकसीम हुए हुए हैं उसका मफहूम ऐसे भी, मैं आपको सच्ची बात बतलाता हूं कि उस्तादों ने फरमाया, हजरत जी ने फरमाया कि अगर किसी ने बेग के खिलाफ किया, बेग साहब के खिलाफ किया, मैं बेग साहब, बेग साहब के खिलाफ किया तो जरूरी नहीं कि ये उससे कहें कि दे खिलाफतनामा। अगर दिल में कदूरत इनके आ गई और उन्होंने कह दिया कि वो खिलाफत मैंने वापस ले लिया, तो उस बंदे के पल्ले कख नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और रब्बे करीम इनके खिलाफ कोई अमल, कोई काम करने की हमें हिम्मत ना दे और हमें अल्लाह ताला बचा के रखे। इनकी मंशा के मुताबिक ही हम अपनी जिंदगी गुजारें। तो अब मैं जिक्र करता हूं वो करामत को, मामूली सी नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है, कोई वाकया ऐसा नहीं है कि जो जुबानी घड़ लिया जाए या सुना दिया जाए, बार बार सुनाया गया। अब फिर सुनाता हूं कि इतनी बड़ी करामत जो जाहिर हुई मुझ पे, मेरे पूरे घर पे, मेरे भाइयों पे, वो वाकया मैं आपके गोश गुजार करता हूं। वो करामत किसकी थी, इनकी, मुझ बदकार पे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए बगैर जिस्मानी तकलीफ के। मालिक इस पे कादर है, कोई तकलीफ ना दे और आपके और बुलंद मनाजिल अता फरमाए। ये हमारी खुशकिस्मती है, ये आप ही की हजरत जूतियों का सदका है, ये रौनक जो लगी हुई है अल्लाह लगाए रखे क़यामत तक। मेरा तलक सबको पता है, अक्सर साथियों को, नए साथियों को नहीं पता तो सुन लीजिए, एक बातल फिरके से था। हम पूरा घराना इस्लाम से खारिज थे, लेकिन उस बातल फिरके में रहते हुए हम अपने आप को पक्का सच्चा खरा मोमन कहते थे, बाकी किसी को खातर में नहीं थे लाते। जब ईमान मिल गया तो आज तक अल्लाह के आगे गिड़गड़ा के रो रो के कि या अल्लाह उस वक्त को दोबारा याद ना कराना, बहुत कुछ हम करते रहे, वाकई ईमान कोई नहीं था हमारा। हम बातल फिरका में थे, शियत में थे, और पूरा घराना जो है इसमें मुब्तला था, कट्टर किस्म के। उसमें मैं सबसे ज्यादा था, मैं बचपन से ब्लेड का मातम किया करता था और जैसे ही जवान होता गया तो फिर मैं जंजीर छुरियों का मातम किया करता था हर साल। मन्नत मानी हुई थी कि इमाम अली मकाम को हर साल खून का नजराना पेश करूंगा। उसमें दो वाकयात ऐसे आए कि मुझे टाइफाइड हुआ एक दफा, तो मैं ये ना कर सका जंजीर का मातम, तो मुझे बिच्छू काट गया सीने पे। कुछ अरसे के बाद सीने पे बिच्छू ने डंक मारा, उससे मुझे यकीन दिलाया गया कि ये जो आपने मन्नत मानी थी ये पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ये आप पे ऊपर आफत आई है। मैंने फिर पक्का ऐद किया कि अब नहीं कभी छोड़ूंगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कुछ अरसे के बाद, फिर किसी बीमारी की वजह से मैं ना कर सका ये जंजीर का मातम, तो मुझे कुत्ता काट गया। कुत्ता इतना गोश्त ले गया, आज भी जगह खाली है वो, और कुत्ते से आज भी मैं डरता हूँ। दूर खड़ा हुआ हो तो मुझे अंदर से कपकपीसी शुरू हो जाती है। तीसरा वाक्या फिर एक ऐसा आया कि मुझे मैं ना कर सका ये, और फिर मुझे ये एक्सीडेंट साइकिल, और साइकिल का एक्सीडेंट हुआ, वो भी एक सिया एसएसपी थे सियालकोट के, जुल्फकार अली शाह, उनके बेटे के साथ। और उसकी ब्रेक जो है लोहे की ब्रेक, वो मेरे इधर गले में घुस गई और फट गया इतना गला। कितना अरसा मैं बीमार पड़ा रहा। इसके बाद मैंने फिर ऐद किया, फिर मेरा कोई साल खाली ना गया, हर साल मैं ये नजराना पेश करता रहा। यहां तक कि दुबई में रहा, दुबई में ममनू था, इसके बावजूद मैं डर के मारे, मैंने कहा कोई आफत आ जाएगी तो मैं जाके पार दुबई में ये जंजीर मार के आता था, लपेट लपाट के लेके आता था अपने आप को। लेकिन वहां पे सब ईरानी थे, छोड़ छाड़ देते, कुछ नहीं थे कहते। ये वक्त गुजरता गया, 83 में अल्लाह ताला ने ईमान दे दिया, बड़े हजरत जी की खिदमत में पेश हुआ और अल्लाह पाक की जात ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया। ये बड़ा बहुत बड़ा मौजज़ा है, तो करामत है हजरत जी की। इसके बाद वो जो निशान थे, वो छुरियों के निशान, ब्लेडों के निशान, मेरा जिस्म भरा पड़ा हुआ था। अक्सर साथी यहां बैठे हुए हैं, नदीम साहब बैठे हुए, आज उन्होंने भी जिक्र किया, बल्कि वो तो दावत दे रहे थे जी मेरे घर आने हैं आप, बच्चे आपको याद करते हैं। क्योंकि ये नदीम साहब भी उस उम्र में, इनकी वालदा, इनकी अहलिया, उमर साहब नहीं आया, वो हजरत मियाँ साहब बैठे हुए सामने, मियाँ रियाज साहब अमीर जमात लाहौर, ये इनकी अहलिया, ये किसी वजह से उसमें मैं भी शामिल था। हम 11 अफराद उम्रे पे ना जा सके 2005 अप्रैल में। 15 तारीख को हजरत जी की मुआयत में जमात पहुंच गई उम्रे वाली कराची, और ये तशरीफ ले गए और हमें फरमा के गए कि आप फिक्र ना करें, आपके पासवर्ड आ रहे हैं पीछे ही, आप भी आएंगे। रुक गए साथी 11 कराची में रुक गए, ये मैं भी रुका रहा। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, आज भी कहता हूं, उस वक्त की कैफियत मेरी मैं बता नहीं था रहा किसी को, लेकिन मेरे अंदर एक ये था कि शायद मेरी नहुसत की वजह से, मेरी बदकारी सियाकारी की वजह से बेचारे ये भी साथी रह गए हैं। क्योंकि मैं अपना जब हाल, अपना जिस्म देखता था कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के ऊपर क्या कुछ करते रहे हैं, तो कांप जाता था कि उस मुकाम पर जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने एहसान फरमाया, 18 तारीख की रात को हम भी चले गए, हमारे वीजे आ गए और हम भी 18 तारीख की रात को पहुंच गए। आगे इंतज़ाम किया हुआ था सारा, हजरत जी ने, साथियों ने रिसीव किया, खाना वगैरह खाया, उसके बाद उम्रे की अदायगी के लिए हम हरम चले गए। उम्रा अदा किया, वापस आए, वापस पता चला कि हजरत जी रुकने यमनी के पास तशरीफ़ फरमा होंगे सुबह। फजर के बाद हम फारग हो गए, देखा तो हजरत सामने जलवा फरोज थे, साथी गए, हजरत बड़े खुश हुए, मिले, मिलने के बाद कहा कि जाओ सीधे होटल में चले जाओ, नहाओ धो और आराम करो। आराम किसी ने क्या करना था, इंतज़ार में बैठ गए कि हजरत तशरीफ लाएंगे जमात के साथ और फिर जिक्र होगा, जिक्र के बाद उम्रे पे जाएंगे आज हजरत। एक दिन छोड़ के एक दिन उम्रा किया करते थे हजरत, पहले हर रोज उम्रा होता था, या उससे पहले अल्लाह जाने रोज कितने उम्रे, लेकिन अब 2005 से हजरत जी ने एक दिन छोड़ के एक दूसरे दिन उम्रा किया करते थे। उस दिन भी यही था कि जिस दिन हम पहुंचे 19 तारीख को हजरत ने उम्रे पे जाना था। हजरत जी ने ऐलान फरमाया नाश्ते के बाद कि जो साथी आए हैं ना रात को जिन्होंने उम्रा, वो आराम करें, सो जाएं, बाकी जिन्होंने उम्रे पे जाना वो तैयारी करें। अब मैंने आगे बढ़ के हजरत जी से, मैंने कहा हजरत मैं बिल्कुल फ्रेश हूं और मुझे कोई थकन भी नहीं हुई, भी मैं आपके साथ उम्रे के लिए जाऊंगा। हजरत ने मुस्कुराए और इजाजत फरमा दी। वो उम्रा मैंने अदा किया। उसके बाद 21 का दिन खाली गया, सॉरी 20 का दिन खाली गया तो 21 को उम्रा हुआ, हजरत जी के साथ नसीब हुआ। 20 के बाद 21 का दिन खाली गया तो अब 20 का दिन खाली गया, 21 को उम्रा हुआ। अब 22 का दिन खाली था, 23 को उम्रा होना था। अब 22 और 23 की दरमियानी शब मैंने ख्वाब देखा, मक्के में होटल में सोए हुए रात की तारीखी में मैंने ख्वाब देखा कि महफल बैठी हुई है, तमाम जो उम्रे के साथी हैं, जितने भी हजरत जी के साथ गए हुए हैं, बल्कि पीछे नजर जाती है तो जो मैं गफीर पता नहीं सारे ही बैठे हुए थे, सारी दुनिया के साथी जमात के तशरीफ फरमा थे। तो मैं साथ वाले को पूछता हूं कि हजरत जी कहां गए हैं। हजरत जी हमारे हजरत जी बेग साहब, तो फरमाते हैं सामने गए हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेने के लिए, इजाजत मिल जाएगी तो हम सबको ज्यारत के लिए लेके जाएंगे। इतने में उसकी बात खत्म होती है, देखता हूं हजरत जी बेग साहब सामने हुजरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराते हुए आते हैं और आके फरमाते हैं चलो सारी जमात इजाजत मिल गई है। सारी जमात तो खुशी खुशी उठ गई जाने के लिए और मैंने उठ के रोना शुरू कर दिया, ख्वाब में रोना शुरू कर दिया। हजरत जी के आगे, हजरत जी पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो, तो मैं अपना जिस्म दिखाता हूं, मैं अपनी कमर भी दिखाता हूं, अपना सीना भी दिखाता हूं और कहता हूं कि हजरत जी मैं किस जिस्म को लेके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं, मुझे तो शर्म आ रही है। तो हजरत जी फरमाते हैं इधर मेरे करीब आओ। ख्वाब में मैं करीब होता हूं तो दोनों दस्ते मुबारक अपने शफकत वाले मोहब्बत वाले प्यार वाले ऐसे मेरे जिस्म पे फेरते हैं, ख्वाब में फेर के, और कहते हैं लो सब दाग खत्म हो गए हैं। अब मैं जिस्म देखता हूं ख्वाब के अंदर तो मेरे दाग खत्म हो गए हैं। इसके बाद की तस्दीक हजरत ने फरमा दी है कि पूरी जमात बशमूल आपके अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी ने सबको वहां पे पेश भी किया। अब अगला वाक्या सुने, मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने देखा कमरे में अंधेरा था, लाइट बंद थी, सोए हुए थे। क्या टाइम था मुझे उस वक्त तो नहीं पता। सीने पे मैंने हाथ मारा तो मेरा बिल्कुल प्लेन, कोई जख्म मेरे को वो उभरे हुए थे, इतने काले काले, जिन्होंने देखे हुए हैं वो देखते पहचानते हैं। ये जो मैंने नाम लिया 11 अफराद का, मियाँ साहब बैठे हुए हैं मुस्कुरा रहे हैं, नदीम साहब, पूरी फैमिली, ये मेरे घर के अंदर इन्होंने कहा कि वो नदीम ने कहा या उमर ने कहा, उमर साहब ने कहा कि खान साहब आप बड़ा मातम किया करते थे, जंजीरों का छुरियों का बड़े निशान है, सुने आपको दिखाओ। मैंने कहा एहराम पहनेंगे ना तो देख लेना और दुआ करें अल्लाह ताला इन पे पर्दा ही रखे। एहराम पहना और सबने देखा, मेरे जिस्म के निशान देखे, सीने के निशान देखे, दुआएं की मेरे लिए। मियाँ साहब ने एक दुरूद याद कराया था वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी याद है, हजरत जी का बताया हुआ सब साथियों ने याद किया था, वो दुरूद पढ़ते रहे। मियाँ साहब आज भी मिलते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पढ़ते हुए मिलते हैं और कमर पे हाथ लगाते हैं शफकत वाला। इन्होंने सबने साथियों ने देख लिया। देखने के बाद जब हम चले गए उम्रे पे, ये बीच में भूल गया था जो दोबारा सुनाई है, उम्रे पे अब वक्त आ गया 23 और 22 की रात को ख्वाब वाला सारा जो बतलाया। मैंने देखा कि जो ख्वाब में हजरत जी ने दस्ते मुबारक मेरे जिस्म पे फेरा है, मेरे निशान कोई नहीं आ रहे जिस्म पीछे, पीठ पे भी ऐसे हाथ लगाया जो रड़कते थे इतने मोटे मोटे, सारी जिंदगी की गलाजत, एक निशान नहीं, मुझे प्लेन नजर आया। मैं उठा चुप करके, खामोशी के साथ वॉशरूम में गया, लाइट जलाई, लाइट जला के अपना सीना देखा शीशे में, कोई निशान नहीं बिल्कुल, बल्कि रंग भी फेर हो गया। कमर देखी, कोई निशान नहीं बिल्कुल। आप यकीन माने, मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, कि वो जो किस्से हम पढ़ते हैं कि जी वो पानी डाला आंखों पे और दांत काटा, मैंने बकायदा पानी लेके आंखों पे डाला कि मैं ख्वाब से बेदार हो गया हूं या अभी भी मैं ख्वाब में हूं। लेकिन जैसे ही मैंने पानी डाला अपनी आंखों पे, उधर से हरम से 3:20 पे अजान हुई तहज्जुद की। अब मुझे यकीन आ गया कि मैं बेदार हो गया हूं। अब मासवाए रोने के और कुछ भी नहीं था। अजीब कैफियत, अजीब हालत, आज कई दफा बयान कर चुका हूं, लेकिन आप यकीन माने बाद में फिर मैं सोचता हूं कि नहीं, असली असलियत हकीकत रह गई है। लेकिन अल्लाह ताला आपके दिलों में डाल दे ये बात, कोई मामूली सा तो वाकया नहीं है। अब मैंने तैयारी की, वजू बनाया, वजू बना के साथी भी उठ गए, हरम चले गए, नमाज पढ़ी और वहां पे बैतुल्लाह को देखता जाऊं, रोता जाऊं, तो मैं ख्वाब सारा भूल गया। अब मेरी ये कोशिश है कि मैं हजरत जी को ये ख्वाब सुनाऊंगा। अब मैं ख्वाब भूल गया, हाथ मारता हूं, ये कि निशान नहीं है, लेकिन आप यकीन माने बिल्कुल जेन से वाश हो गया, जैसे डिलीट हो जाता है ना सब कुछ, ऐसे डिलीट हो गया कि खुद देखा क्या है। अब मैं फिक्रमंद रोऊं भी कि या अल्लाह मैं हजरत जी को सुनाऊंगा जब, तो क्या बतलाऊंगा, निशान कैसे, क्या हुआ था ये मेरे साथ, क्या हुआ। बार बार वहां पर देखूं, सीने पर हाथ लगाऊं, वक्त गुजर गया, इशराक हो गई, इशराक के नफल पड़े, होटल में आ गए, होटल में आने के बाद सुन मुन बिल्कुल चुप, दुआएं अल्लाह के आगे कि या अल्लाह मैंने बड़ा ही अजीब ख्वाब ये देख लिया, मैं अपने हजरत जी को सुनाऊं, मुझे कुछ पता तो चले कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं। इतने में कौसर साहब, उन्होंने ख्वाब सुनाया, फिर मैं गौर किया, जोर दिया अपने पे, मुझे फिर भी नहीं याद आया। अब मैं खामोश रहा। अब 23 तारीख को फिर हजरत जी ने जमात को लेके जाना था और उमरे की अदायगी करनी थी, मैं भी चला गया अल्हम्दुलिल्लाह साथ। वापस आए, उमरा किया, तवाफ किया, तवाफ के बाद सही की, सही के बाद हल करवाया सब साथियों ने, मखसूस एक दुकान हजरत जी ने बतलाया हुआ था उसी से सब करवाते थे कराया। लेकिन इस सारे उसके बीच में मेरी यही दुआ अल्लाह से कि या अल्लाह मैंने बड़े ही, ये तो एक अजीब किस्म का, मैं क्या सुनाऊं, क्या याद ही कुछ नहीं आ रहा। हलक करवा के वापस आए तो बाबे अब्दुल अजीज से हम निकल के अपने होटल जाते थे, तो वहां से मरवा से जब हम दाखिल हुए हैं अमिताभ में, तो हजरत जी साथ थे, पूरा ग्रुप साथ था, जिसमें सब साथ थे, ये मियाँ साहब भी, सब साथी भी, वो भी 11 अफराद, वो भी जो मुझे निशान देख गए थे। जैसे ही हम दाखिल हुए हैं, सामने बैतुल्ला पे मेरी नजर पड़ी है, तो ऐसे जैसे पर्दा हटा दिया, सारा ख्वाब मुझे याद आ गया। मैंने वहीं पर हजरत जी को रोका, मैंने कहा हजरत जी मैंने एक ख्वाब देखा है, तो आप यकीन माने वो आज भी चेहरा मेरे सामने है, मुस्कुराते हुए वहीं पे खड़े होकर मुझे पूछते हैं सही जी क्या देखा मेरी जान। तो मैं सारा ख्वाब सुनाता हूं, और सुना सुना के मैं अपना सीना सारा, एहराम बना हुआ था ऊपर नंगा करके, मैं दिखाता हूं ये सीना मेरा देख लें हजरत, ये कमर देख लें आज एक निशान। तो हजरत जी सिर्फ इतना फरमाते हैं मुस्कुराते हुए कि जहीर जी ये ख्वाब नहीं, ये तो हकीकत थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ये जो साथी बैठे हुए हैं, इनकी कैफियत फिर अजीब, जिन्होंने देख लिए थे ये निशान, और वहां पे इस किस्म का, ये तो प्लास्टिक सर्जरी भी कोई करे, बड़ा माहिर डॉक्टर सर्जन, तो उसको भी कुछ ना कोई निशान, यहां पे तो है ही कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन साफ, रंग साफ, बिल्कुल नीचे जिस्म, चेहरे से जिस्म का रंग साफ हो गया था। अब अल्लाह पाक का शुक्र है, कुछ कुछ हिस्से मिलता है जब से दुआएं शुरू की हुई है हजरत से कह के, तो ये हुआ। अब ये वाकया सुना के, हजरत जी को सारा ख्वाब सुना के, देख के, फिर मैं वापस आया। वापस आके मैंने सही साहब को फोन किया, पहले अपनी बीवी को फोन किया, पहले अपनी बीवी को फोन किया और उसको मैंने बतलाया ये सारा, तो वो समझ ना पाई। हकीकत है वो ये समझी कि शायद हजरत जी की करामत ये हो गई है कि वो जो काले काले दाग थे सफेद हो गए होंगे, जैसे जख्म काफी अरसे के बाद वाइट नहीं, लेकिन निशान तो मोटा सा रहता है, ये हो गए होंगे। पर उसने सुना, उसके जो मुंह में अल्फाज आए, उसने शुक्राने के अदा किए और कहा कि चले आप आएंगे तो देखेंगे। फिर मैंने सही साहब को फोन किया, बड़े भाई मेरे, मेरे बड़े भाई सही साहब, जो जमात में लाने का सबब बने, मैं आज भी उनका शुक्र गुजार हूं बेपना। तो उन्हीं पिशावर में थे, तो मैंने मक्के से फोन किया, और फोन उस वक्त हाजी साहब, उनसे बड़े जो भाई हैं हाजी खलील साहब, अक्सर साथी जानते हैं उनको, मैं कहता हूं आशिक के हजरत, वाकई हम सबसे उनके इश्क की इंतहा थी, और वो पा भी गए, दर्जात बहुत पा गए, अल्लाह पाक उन्हीं के सदके हमारा भी बेड़ा पार करे और हजरत की जूतियों में बिठाए रखे, इनकी मोहब्बत के साथ चले जाए, बेड़ा पार है इंशाल्लाह ताला। मैंने सही साहब को सुनाया, सही साहब ने सुना, सुनने के बाद इन्होंने दो दो तीन तीन दफा मेरे से पूछा नहीं वो निशान जो, मैंने कहा जी है ही कोई नहीं, कह रहा प्लेन हो गया, मैंने कहा बिल्कुल प्लेन हो गया। अल्लाह, इन्होंने बड़े अपने अंदाज से जनाब शुक्र अदा किया, और मैं कह के तो इनको सुना के मेरे ख्याल कोई थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा, तो इनकी कॉल आई मेरे पास, बैक कॉल आई सही साहब की, पिशावर से बड़े भाई साहब की, इन्होंने कहा जहीर साहब, और वो दस्ते शफकत मोहब्बत आप ही पे नहीं, हमारे पूरे खानदान पे फिर गया है। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, कहने लगे वो हाजी साहब के निशान थे आपको याद है, वो भी जंजीर मारा करते थे। मैंने कहा जी जी, कहने लगे वो बैठे हुए उनको वाकया सुना के कहा हाजी साहब आप अपने जरा देखें, तो वो भी खत्म हो गए हैं। उनकी अहलिया भी देख के तो हैरान परेशान, एक अजीब किस्म की कैफियत बनी। फिर कहते हैं हमने सियालकोट छोटे भाई शहजाद गुल, अल्लाह उसको सेहत दे, बीमार है नहीं आ सकता, वो भी जंजीर मारता था कुछ कुछ सालों में मारी थी, उसके भी निशान थे, उसको फोन करके पूछा, उसने भी तस्दीक की, देख के कहा जी नहीं, पहले उसे पूछा अपने निशान जरा, कह रहे जी नहीं नहीं वो निशान तो हैं, या उन्होंने कहा नहीं अब देख, तो उसके बाद उसने देखे तो उसने कहा कि जी ये निशान तो पता नहीं का, उसको वाकया नहीं सुनाया, सिर्फ वो देख के वो कहने लगा जी सही साहब ये वो क्या हो गया, अब निशान तो एक भी नहीं था, वो थे, वो अल्लाह की कसम थे, बहुत थे, उसकी बीवी ने कहा जी बेपनाह थे, तो ये वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए। अब सही साहब ने जब मुझे बतलाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे खानदान पे करम हो गया है, रहमत छा गई है और अल्लाह पाक ने करम कर दिया और बहुत बड़ी करामत हज़रत जी की जाहिर हुई है, ये मैं कह सकता हूँ अपने आप को खुशकिस्मत, अल्लाह ताला ये दौलत साथ जाए, मोहब्बत की, इश्क की, इनके इश्क की मोहब्बत की दौलत साथ जाए तो बेड़ा पार है, सब कुछ चला जाएगा, जो खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए, जो कहीं पर कसर रह गई तो फिर सारा कुछ यहीं पर रह जाएगा, कख नहीं जाना, अल्लाह इनकी मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारे, इनकी मोहब्बत में बरज़ख में, इनकी मोहब्बत में आखरत में, इंशाअल्लाह ताला हर साथी के लिए दुआ है। अब मैं पाकिस्तान आया, जब नहीं अगला वाक्या भी मैं सुना दूं, अब मदीने शरीफ का, जब मदीने शरीफ पहुंचे, मदीना शरीफ पहुंच के हाजिरी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिरी देनी थी, तो नमाज के बाद हजरत ने फरमाया कि हम नमाज की अदायगी के बाद जो है जाएंगे सलातो सलाम के लिए। अब मैं ये देखता बस हर चीज अजीब किस्म की, मैं बस वो इसी शौक के अंदर, तो मैंने देखा कि जैसे ही हजरत ने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के सामने दुरूद व सलाम, शुरू तक खड़े नहीं होने देते, लेकिन वो रूहानी कैफियत ऐसी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने बकायदा तौर पर बड़े इत्मीनान से सलातो सलाम पेश किया। इतने में मैंने देखा कि दरवाजा जो सा वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा अतर का दरवाजा खुला, फरिश्तों ने खोला या फरिश्तों ने खोला अल्हम्दुलिल्लाह, और हजरत सीधे तशरीफ ले गए, पूरी जमात देख रही है, हजरत जब अंदर चले गए या तशरीफ ले गए तो हजरत नजर आ रहे हैं, बाकी नूर ही नूर नजर आ रहा है, कोई बंदा कह नहीं सकता। इतने में मैं देखता हूं कि हजरत जी के रुखसार मुबारक से शुआएं नूर की निकल रही हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो मैं साथ वालों को पूछता हूं कि ये हजरत के नूर निकल रहा है, नूर तो सीने से निकलता है ये चेहरा मुबारक है, तो कहते हैं जहां जहां नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत जी के बोसे ले रहे हैं वहां वहां से नूर बुलंद हो रहा है। ये वाकया मदीने शरीफ में पेश आया। उसके बाद उम्रे की अदायगी के बाद मैं कराची पहुंचा। कराची पहुंच के सबसे पहले मिलने के बाद मेरी बीवी ने तकाजा किया जी वो निशान तो बताओ जो सफेद हो गए हैं। मैंने कहा सफेद है ही कोई नहीं, बताऊं क्या। जब उसने ये देखा तो आप यकीन माने उस पर सख्तातारी हो गया। और मैंने कहा तुझे क्या हुआ है, तो कहती है ये तो आप प्लास्टिक सर्जरी करा के आ गए हो। मैंने कहा इससे भी कोई बड़ा काम हो गया। बच्चे मेरे माशाल्लाह बेटे मेरे, उन्होंने देखा, जाहिर है देखते थे वो, तो मैं आखिर उनको बतला ही दिया हुआ था, पहले पहले तो मैं बहाने करता था, उन्होंने भी देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हुए, वो भी आज हजरत जी की बैत हैं मेरे बेटे जो हैं तीनों माशाल्लाह, अल्लाह उनको सलामत रखे इस्तकामत दे। अब मेरी हमशीरा बड़ी हमशीरा सियालकोट में, जो कि हर साल मैं ये हरकतें करके जब आता था तो वो मेरे जख्म भी साफ किया करती थी, और उस पर वही जो हमारा अकीदा था खाके शफा लगा के उन जख्मों की सही होने की दुआ भी कर दिया करती थी, मुझे नहला भी दिया करती थी, बड़ी थी सबसे बड़ी वालदा की जगह पे। वालदा का तो इंतकाल हो चुका हुआ था, वालिद साहब का भी। अब उस हमशीरा ने कहा कि तू सियालकोट आ, मैं भी तुझे देखूंगी, और यहां पर दूसरी हमशीरा वो भी तुझे कह रहे हैं कि हम देखेंगे। जब मेरी बीवी ने उनको बतलाया पूरी कंडीशन, तो उनके और जस्तजू और इश्तियाक हुआ कि हमने देखना है। मैंने कहा बात सुनो, उधर से वो सही साहब कह रहे हैं, हाजी साहब कह रहे हैं, और वो हमशीरा पेशावर वाली भी कह रही है कि आप पेशावर, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप पेशावर आ जाओ, मैं पेशावर चला जाता हूं। उन्होंने कहा ठीक है आप पहुंचो। मैं पेशावर पहुंचा, पेशावर गया अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले सही साहब हाजी साहब ने ये देखा, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा थे, हद से ज्यादा, ये देख के एक एक दफा नहीं कई कई दफा इन्होंने हाथ फेरा, रोए आंसुओं से रोए, साथ मुझे भी रुलाया कि अल्लाह ताला ने किस हस्ती से हमें, हम हैं क्या गंदे मंदे गलीज, किस हस्ती से जोड़ दिया हमें, یہ کیا اللہ پاک نے انعام و اکرام عطا فرمایا. الحمدللہ شکر شکر خدا کا کروڑ کروڑ دیکھا ہم شیرہ نے دیکھا, روئے رونے کے بعد اللہ نے صبر دے دیا بڑا. میں کہا اب خدا کے واسطے اب میرے لیے دعا کرو, اپنے لیے بھی دعا کرو, اللہ استقامت دے. میں تو واپس آ گیا. چند دنوں کے بعد اس ہمشیرہ کا وہیں پہ پشاور میں برین ہیمرج ہوا اور انتقال کر گئی. اچھی بھلی بعد میں پتا یہی چلا کہ وہ یہ چیز جو سی ہے نا برداشت نہ کر پائی دیکھ کے. نیک تھی, صالح تھی, بیعت تھی حضرت کی, تہجد گزار تھی الحمدللہ. اللہ پاک نے اس کے بھی درجات نشاندہ کی ہے الحمدللہ, صاحب بصیرت لوگوں نے اس کے بھی اللہ نے درجات بلند فرمایا حضرت جی کی جوتیوں کے صدقے. اب اس کے بعد اجازت ہے نا حضرت, اس کے بعد میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ جرو شاہ تھا سیالکوٹ کا, وہ میں سیالکوٹ میں ہم اکٹھے زنجیر اور ماتم مقابلے سے کیا کرتے تھے, اور وہ بھی کراچی چلا گیا مارٹن روڈ امام باڑہ میں ہوتا تھا, وہ وہیں پہ خدمت گزار تھا, میں بھی کراچی میں تھا. پھر کراچی میں جتنا عرصہ میں رہا اسی اپنا ایم اے جناح روڈ کے اوپر جو جلوس آج بھی نکلتا اسی ترتیب سے وہیں پہ اسی طریقے سے آمنے سامنے زنجیریں مارنی کرنی. تو جب مجھے ایمان نصیب ہوا تھا تو اس وقت میں اس کے پاس گیا تڑپ لے کے, دل کی تڑپ لے کے کہ کاش کے اس کی سمجھ میں آ جائے, باقی تو کوئی لائے نہ لائے, یہ بڑا میرا دوست ہے, پکا دوست ہے. او جناب اس پہ کوئی اثر نہ ہوا, کچھ بھی نہ ہوا. اس نے کہا آپ کے دل برے ہو گئے ہوئے, میلے ہو گئے, کالے ہو گئے ہوئے, پتہ نہیں کہاں چلے گئے, کون سی باتوں کے نام تمہیں عشق سے چھین لیا. انہیں جو منہ میں آیا کہہ دیا, میں چلا آیا واپس. اس کے بعد اب میں گیا اس کے پاس, جب یہ میرے پہ نشان ختم ہوئے میں نے کہا اب یہ دکھاتا ہوں کہ وہ اس کے بھی بے پناہ ہے, اب وہ ایمان لے آئے گا یہ دیکھ کے. لیکن ایمان میرے بھائیو دوستو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے, اللہ کی دین ہے, جس کو چاہے دے دے. اس نے دیکھا, میں نے کہا دیکھ یار یہ بہت بڑا ایک اللہ پاک نے انعام مجھے دیا ہے, اور یہ دیکھ میرے جسم سارے وہ نشان جو تھے وہ ختم اور ایسے ایسے ختم ہوئے. سارا اس نے سنا, میں نے سینہ دکھایا, سنتا رہا, میں خوش ہوتا رہا شاید اس پہ اثرات ہو رہے ہیں. اس کے بعد دیکھنے کے بعد سارا کرنے کے بعد کہتا ہو یار آج کل ٹیکنالوجی بڑی تیز ہے اور بڑی بڑی سرجریاں ہوتی ہیں, تو پتہ نہیں کیا کروا کے آ گیا. اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ سرجری ہے؟ کہتا ہو بہت کچھ ہوتا ہے, چھوڑ رہنے دے, بس تو لگا رہا اپنے اس پہ اور مجھے اپنے اس پہ رہنے دے, میں صحیح ہوں بالکل. میں نے کہا یار بات سن, تو ایک زخم جو تیرا ہے نا, تیرے تو ہیں ابھی موجود ہیں, چل میں سرجری کروائے, تو ایک زخم سرجری سے جذبات میں نے کہہ دیا. میں نے مجھے پتا تھا نا وہ نہیں, میں نے کہا ایک جسم ایک زخم یہ ابھرا ہوا جو سا ہے سرجری سے صحیح کروا لا, کروا, خرچہ میں دیتا ہوں اور میں پھر واپس ہو جاؤں گا, وہی شیعہ ہو جاؤں گا, تو ایک کروا. کہہ رہا نہیں نہیں, میں تو کہتا ہوں تمہارے جیسا بد نصیب ہی کوئی نہیں, اور تم اتنے بد نصیب ہو, یہ جو نشان چمکنے تھے نا روزے محشر وہ بھی تم سے چھین لیے گئے ہیں, اتنے تم منحوس. میں نے کہا جا دفاع ہو پھر, دور پھٹے منہ تیرا, خصموں کو کھا نہیں لاتا ایمان. تو یہ میرے بھائیو یہ میرے حضرت جی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے, یہ مانے یا نہ مانے یہ کچھ بھی نہیں مانتے, یہ جو کہو نہیں مانتے. الحمدللہ اللہ پاک ہم ساری جماعت کو ان کی جوتیوں میں رکھے, ان کے سائے کے نیچے رکھے, اور اللہ پاک ان کو طویل عمر اور صحت کاملہ. میں یہ بھی دیکھ چکا ہوں الحمدللہ, پنڈی کے اجتماع کے بعد میں نے حضرت جی کو سنایا, میں پنڈی کے اجتماع کے بعد دیکھا کہ حضرت جی مرشد آباد تشریف لائے ہیں, اجتماع ہے اور حضرت جی بڑے حضرت جی کے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ کو مبارک دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیار کر رہے ہیں, مبارک بھی دے رہے ہیں, اور حضرت اپنے قدموں سے بغیر کسی سہارے کے چل پھر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھی وقت آئے گا, آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, انہی کی وجہ سے ساری آباد ہیں اور سب. اجازت ہے.